आकाशवाणी है, अब आप सरफिरोजी से समाचार सुनिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिम्स्टेक में संस्थान और क्षमता निर्माण की दिशा में भारत संचालित कई पहलों की घोषणा की। बैंकॉक में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत में आपदा प्रबंधन, टिकाऊ समुद्री नौवहन, पारंपरिक चिकित्सा और कृषि में अनुसंधान और प्रशिक्षण पर बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए एक नए कार्यक्रम बोधि यानी मानव संसाधन अवसंरचना के संगठित विकास के लिए बिम्स्टेक की भी घोषणा की। इसके अंतर्गत पेशेवरों, विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, राजनयिकों और अन्य लोगों को प्रशिक्षण तथा छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक समुद्री नौवहन समझौते पर हस्ताक्षर, बिम्स्टेक बैंकॉक दृष्टिकोण 2030 अपनाने और बिम्स्टेक प्रतिष्ठित व्यक्ति समूह की रिपोर्ट को अपनाने का स्वागत किया। बिम्स्टेक सदस्य देशों ने शिखर सम्मेलन घोषणा को भी अपनाया। थाईलैंड की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज थाईलैंड में दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन बिम्स्टेक की बैठक से अलग कई द्विपक्षीय बैठकों में भाग लिया। श्री मोदी ने आज बैंकॉक में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ बातचीत की। इस संदर्भ में सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत नेपाल के साथ संबंधों को प्राथमिकता देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से भी बातचीत की। बैठक में अवैध सीमा पार करने को रोकने के उपायों पर भी चर्चा की गई। श्री मोदी ने हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सुविधा के प्रति चिंता व्यक्त की। इससे पहले आज सवेरे श्री मोदी ने म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन आंग हलिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिनकी कुल लागत 18,658 करोड़ रुपए है। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से 3 राज्यों महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 1,247 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीवंत ग्राम कार्यक्रम के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि इस कार्यक्रम से उन ब्लॉकों के गांव का व्यापक विकास होगा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ वहां रहने वालों को जीवन यापन की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इससे पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी और इन गांवों की स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।
प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट पे सेकेंड इसका फेज अप्रूव किया। इंडो चाइना बॉर्डर पे 2023 में फर्स्ट फेज हुआ था कवर और आज सेकेंड फेज कवर हुआ, जिसमें 6,839 करोड़ रुपीस से और नए प्रोजेक्ट्स ऐड हुए। अब उसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी जितने भी एरियाज हैं, गुजरात के, राजस्थान के, पंजाब के और इधर बांग्लादेश से रिलेटेड बॉर्डर एरिया, मिजोरम, म्यांमार से रिलेटेड एरिया, इन सबको कवर करके एक सेकेंड फेज इसका चालू किया है।
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही संसद का बजट सत्र समाप्त हो गया, जो इस वर्ष 31 जनवरी को शुरू हुआ था। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बीड़ी और सिनेमा उद्योग तथा गैर कोयला खदान श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के दौरान छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले 92,000 से अधिक बच्चों को कुल 32 करोड़ 51 लाख रुपए वितरित किए गए हैं। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट आज 2 दिन की यात्रा पर बेंगलुरु पहुंचे। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने उनका स्वागत किया। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से है। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। टूर्नामेंट में कल चेन्नई में दिन में 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।